ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस भगवद्गीता सार कार्यक्रम में और आज हम भगवद्गीता के 16वां अध्याय से चर्चा करेंगे। इस 16वां अध्याय का शीर्षक है देवी और आसुरिक स्वभाव। तो इससे पहले हमने 15वां चैप्टर पढ़ा था, 15 चैप्टर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे अगर आपको भगवत धाम की प्राप्ति करनी है तो आपको इस भौतिक जगत और भौतिक इच्छाओं से दूर होना पड़ेगा या उससे विमुख होना पड़ेगा। आपको साधु या संत या भक्तों के संग में आकर भक्ति और भगवान के प्रति इच्छा या आसक्ति पैदा करनी पड़ेगी। अब इस 16 चैप्टर में भगवान उल्लेख करने वाले हैं दो जीवों का या दो प्रकार के मनुष्य का। अगर आपको याद हो भगवद्गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चर्चा करते हैं दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जो मेरी शरण में आ जाते हैं और दूसरी मेरी शरण कभी नहीं लेते। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। और जो दूसरे होते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन। एक पायस पुण्य आत्मा जो भगवान की शरण लेने के लिए आती हैं, एक दुरात्मा जो भगवान की शरण लेने के लिए नहीं आती। इस अध्याय के अंदर अब भगवान श्री कृष्ण उन्हीं दो जीवों के बारे में, मनुष्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कहा जाता है सत्ययुग में जो राक्षस प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हुआ करते थे वो अलग अलग ग्रह पर रहा करते थे। त्रेत युग में वो एक ही ग्रह पर रहा करते थे। द्वापर युग में वो एक ही परिवार में पाए जाते थे। और कलयुग में वो हर व्यक्ति, हर एक जीव के मन में एक दैवी गुण और आसुरिक गुण होता है। व्यक्ति को जीवन में प्रगति के मार्ग पर बढ़ना है। प्रगति का मार्ग का परिभाषा ये नहीं कि आप अधिक से अधिक धन और संपत्ति कमाएं, इसके ऊपर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। चाहे व्यक्ति के पास कितना धन संपत्ति क्यों ना हो, उसके सामने दुनिया का सबसे टेस्टी और एक्सपेंसिव खाना क्यों ना रखा हो, पर व्यक्ति का मन शांत नहीं है तो खाने में कोई आनंद नहीं आएगा, हाँ या ना। बल्कि अगर मन उसका चिंताग्रस्त है तो भूख भी नहीं लगती, तो आप पैसे को कैसे एंजॉय करोगे। तो जो सुख है, असली सुख आता है आध्यात्मिक जीवन का पालन करने से। जब व्यक्ति का भगवान के संग संबंध जुड़ता है तो जो आध्यात्मिक सुख है उसकी क्वालिटी क्या है, एक तो वो कभी नश्वर नहीं होता और दूसरा हमेशा बढ़ता ही रहता है। और जो भौतिक सुख है वो पल दो पल का सुख है, सुख उतना ही है जितना आपने दुख सहा है। जैसे मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, जितना व्यक्ति प्यासा होता है उतना ही वो पानी की वैल्यू को समझता है। अगर प्यास ना लगे तो व्यक्ति पानी पीता नहीं है, उसके मूल को नहीं समझता। इसी प्रकार अब इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस 16वें अध्याय के द्वारा हमें बताने का प्रयत्न करते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति को कैसे देव गुण या डिवाइन क्वालिटीज़ को अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए। तो ये डिवाइन क्वालिटीज़ आती कहाँ से हैं? सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप को सत्व गुण में स्थित करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर सत्व गुण प्रबल है उसी व्यक्ति के अंदर देवगुण हो सकते हैं, और जिन व्यक्ति के अंदर रजोगुण और तमोगुण प्रबल है उनके अंदर देवगुण मिलना बहुत मुश्किल होता है। जितना व्यक्ति रजोगुण से तमोगुण की तरफ चलता है या बढ़ता है उतना ही उस व्यक्ति के अंदर आसुरिक गुण पैदा हो जाते हैं। ये क्या है आसुरिक गुण और देवगुण, एक उदाहरण के रूप में मैं बताकर आगे भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं उसका उल्लेख करूँगा। चलिए महाभारत में, महाभारत में भी चलने से पहले आज इस अध्याय के माध्यम से हम एक 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 ऐसे कैरेक्टर का उल्लेख करेंगे जो अभी तक हमने नहीं करा। हमने शुरुआत में धृतराष्ट्र वाचा भगवद्गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से होती है, तो धृतराष्ट्र को भी क्रेडिट मिलता है भगवद्गीता में। ऑफकोर्स कृष्ण अर्जुन को तो क्रेडिट मिलता ही है, पर एक व्यक्ति है जो इस भगवद्गीता की रचना में जिसने बहुत बहुत सहयोग दिया, कौन? व्यासदेव जी नहीं, ऑफकोर्स उन्होंने महाभारत लिखी है, वो व्यक्ति है दुर्योधन। अगर वो दुर्योधन आसुरिक प्रवृत्ति का ना होता और भगवान की बात को ना नकारता तो युद्ध कैसे होता? और युद्ध हुआ, युद्ध भूमि पे आकर अर्जुन परेशान ना होते तो भगवद्गीता का ज्ञान कैसे मिलता? तो चलिए, कुरुक्षेत्र के 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब दुर्योधन भीम के संग जब उनका युद्ध हुआ अब वो हार चुके हैं, वो लंबी कहानी है, सारांश में तो आपको सबको पता ही होगा किस प्रकार कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भीम को बोलो, अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि भीम ने कहा था जब वो गैम्बलिंग मैच हुआ था, जब दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी तुम तो एक वैश्य के समान हो, तुम तो मेरी दासी हो, आओ मेरी जांगा पे आकर बैठो, तो उस समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी, हे दुर्योधन तेरी इसी जांगा को तोड़ कर तेरे को मृत्यु के घाट पहुँचाऊंगा। तो कृष्ण अर्जुन के माध्यम से भीम को याद दिलाते हैं और भीम उस युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए दुर्योधन की जांगा को तोड़कर उनको मार देते हैं। दुर्योधन मृत अवस्था में पड़े हैं और समय भगवान श्री कृष्ण उनके सामने जाते हैं तो दुर्योधन कृष्ण को देखकर उनको ब्लेम करने लगते हैं, बोलते हैं हे कृष्ण, हे ग्वाल बाल, जो भी कुछ हुआ है तेरे कारण हुआ है, तूने धोखा दिया, तूने प्रॉमिस करा था या वचन लिया था तू अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, तेरे कारण कितनी बार तूने अस्त्र शस्त्र उठाए युद्ध भूमि में, कितनी बार तूने अर्जुन की मदद करी, वरना 5 पांडव बचते नहीं, सब तेरे कारण। इस प्रकार दुर्योधन कृष्ण में दोष निकालने लगते हैं। कृष्ण सुनते हैं और फिर कृष्ण दुर्योधन को बोलते हैं, दुर्योधन अपने कर्म के लिए मुझे मत दोषी ठहराओ, तुम्हें मैंने भी आकर समझाया था, तुम्हारी जो दशा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है और तुम्हारी दशा का प्रमुख कारण क्या है, तुमने कभी भी अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन नहीं किया। ये एक प्रमुख चिन्ह या सिम्टम होता है आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों का। जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने आप को हमेशा स्वतंत्र मानते हैं, उनको लगता है हमें किसी की भी सलाह, किसी की आज्ञा पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह, विदुर, द्रोणाचार्य, नारद मुनि तक आए थे, यहाँ तक कि दुर्वासा मुनि, कर्दमा, सभी जितने भी आप मुनियों को जानते हैं सब ने आकर सभा में कभी ना कभी आकर दुर्योधन धृतराष्ट्र को मना करा कि ऐसा मत करिए, पर दुर्योधन हमेशा उसको नकार देते थे। तो सबसे पहली चीज जो एक आसुरिक गुण का सबसे प्रमुख निशानी है, वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है और वो किसी की भी सलाह मशवरा को नहीं सुनता। अगर सुनता है तो आप बोलेंगे दुर्योधन तो शकुनी की बहुत सुनता था, वो सिर्फ उन्हीं व्यक्ति की सुनता है जो उसकी भाषा बोलना जानते हैं। कोई व्यक्ति अगर पते की बात, धर्म की बात कहे तो ऐसा आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कभी नहीं उस बात को मानता। उसी प्रकार और आसुरिक गुण क्या होते हैं उसका उल्लेख अब इस अध्याय में है, तो आगे वर्णन करते हैं। शुरुआत के 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले देव गुण क्या होते हैं ऐसे 26 गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे विनम्रता हो गई, अभयम, फियरलेसनेस हो गया, अहिंसा, कंपैशन, फॉरगिवनेस इत्यादि करके 26 गुणों का वर्णन किया गया है भगवान के द्वारा। फिर इसके बाद इन 26 क्वालिटीज़ का वर्णन करके, क्योंकि हम पे ये समय तो नहीं रहेगा हर क्वालिटीज़ का वर्णन करने के लिए, आप शिला प्रभुपाद के द्वारा दिए हुए तात्पर्य को जरूर पढ़िए जिसमें विस्तार से शिला प्रभुपाद इन सभी 26 गुणों के बारे में बताते हैं। हम जो आगे भगवान ने इस पर चर्चा करी है उस पर जोड़ देंगे। 4th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को 6 प्रमुख आसुरिक गुण जो होते हैं उसका उल्लेख करते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधापार्युषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसंपदमासुरिम। जो आसुरिम व्यक्ति होता है, दम्भ, दम्भ मतलब प्राउड या प्राइड, प्राउड का मतलब क्या है, जो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी अपने आप को बहुत महान समझता है उसको कहा जाता है उसमें दम्भ है। फिर दर्पो, दर्पो का मतलब एरोगेंस, जिस व्यक्ति के पास कुछ एजुकेशन, कुछ पोजेशंस हैं, जब वो व्यक्ति उस पर घमंड करता है तो उसको कहा जाता है दर्पो। फिर अभिमान, अभिमानी किसको कहा जाता है, जो व्यक्ति चाहता है कि दूसरे उसका सम्मान करें, अगर सम्मान ना हो तो वो दुखी हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अभिमानी। क्रोध, जो बहुत जल्द क्रोधित हो जाए, मतलब तमोगुण में उतर जाए, उस प्रकार क्रोध एक गुण बताया हुआ है। फिर पारुष्यम, जिसकी वाणी बड़ी कठोर है, जब भी बोलता है दूसरों के दिलों को दुखाता है। और छठा गुण जो बताया गया है, या अवगुण एक प्रकार से, अज्ञानता। अज्ञानता कैसी? सबसे पहले चीज अज्ञानता के बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, कभी किसी अथॉरिटी को नहीं मानना, किसी वरिष्ठ की बातों को नहीं सुनना, दूसरा शास्त्रों का उल्लंघन करना, और तीसरा जो मन कहे वो करना, ये सिम्टम्स होते हैं अज्ञानी के। इस प्रकार अज्ञानी, या ये बताइए, सिम्टम्स होते हैं जो व्यक्ति एक प्रकार से ये राक्षसी गुण के सिम्टम्स बताए हुए हैं। तो जब अर्जुन ये सुनता है तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, हे प्रभु, मैं भी युद्ध लड़ने वाला हूँ, युद्ध में ना जाने कितने मासूमों की हत्या होगी, तो जो मैं युद्ध करने वाला हूँ क्या वो भी डेमोनियक है, क्या वो भी राक्षसी गुण का है? तो भगवान फिर पांचवें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन नहीं, दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरी मतः मा सुचा संपदम दैवम अभिजातोसी। पांडव अर्जुन, तुम्हारा तो दैवी जन्म हुआ है, दैवी गुण के संग तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे अंदर तो अवगुण कोई है ही नहीं, फिर भी अर्जुन संतुष्ट नहीं होते। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु मुझे फिर भी समझ नहीं आया, युद्ध करना आसुरिक कैसे नहीं हुआ? कि युद्ध लड़ूंगा, इतने लोगों की हत्या होगी, तो आसुरिक काम ही हुआ ना। तो फिर भगवान श्री कृष्ण छठे श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक को सुर कहा जाता है, एक को असुर कहा जाता है। सुर मतलब देवगण और असुर मतलब असुरिक या राक्षस प्रवृत्ति के। ये एक समान एक प्रकार से इस सृष्टि में ये दो प्रकार के जीव हमेशा पाए जाते हैं। अगर आप इसका इतिहास देखें तो इनके माता पिता भी एक ही हैं। इनके पिता कश्यप मुनि की कई पत्नियां थी, उसमें से दो पत्नियां दिति और आदिति। दिति से पैदा होते हैं दैत्यास और आदिति से पैदा होते हैं 12 आदित्यास। उस प्रकार ये राक्षस प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति के लोगों की रचना आगे होती है। फिर भी अर्जुन के मन में संतुष्टि नहीं है, तो फिर भगवान एक बार फिर सातवें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन आसुरिक गुण कैसा होता है। और केवल सातवें श्लोक में नहीं, सातवें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक भगवान विस्तार से आसुरिक गुणों का वर्णन करते हैं, ये समझाने के लिए कि अर्जुन तुम जो युद्ध लड़ने वाले हो वो आसुरिक प्रवृत्ति के कारण नहीं है, तुम कोई गलत कर्म नहीं करोगे, तुम तो महान आत्मा हो, इसलिए तुम मुझसे अब विस्तार में सुनिए, जो आसुरिक व्यक्ति होता है उसकी मानसिकता, उसका व्यवहार, उसकी सोच कैसी होती है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अब सातवें श्लोक से 20वें श्लोक तक इस आसुरिक प्रवृत्ति का विस्तार से वर्णन करेंगे। हम लोग समय के अनुसार सारांश में वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे। तो सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं, सबसे पहली बात, अर्जुन जो आसुरिक व्यक्ति होता है उसको नहीं पता होता सही क्या है गलत क्या है, ना ही तो उसको शुद्धता का ज्ञान होता है, मतलब ना ही तो वो कभी स्नान लेता है, ना ही तो भारी रूप से अपने शरीर को साफ करता है, और मन तो उसका बड़ा ही दूषित होता है, और तीसरा उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का अच्छा व्यवहार की कल्पना करना भी गलत होता है। मतलब इस व्यक्तियों को स्त्री का सम्मान करना नहीं आता, वरिष्ठों का आदर करना नहीं आता। उदाहरण के रूप में किस प्रकार दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया था, जब विदुर ने दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया कि हे मूर्ख, तू गलत राह पे जा रहा है, तेरे कारण पूरे कुरुवंश का सर्वनाश होगा, और दुर्योधन इतना क्रोधित हो जाता है कि विदुर को गाली देकर हस्तिनापुर से बाहर निकाल देते हैं। और वही विदुर जब युद्ध समाप्त होने के कई कई सालों के बाद हस्तिनापुर वापस पहुंचते हैं, युधिष्ठिर महाराज आंखों में आंसू लिए विदुर के चरणों में गिरते हैं, बोलते हैं, हे प्रभु, आप इतने समय से कहाँ थे? देखिए एक अंतर, एक यहाँ पे दुर्योधन जो विदुर का अपमान करके उनको निकाल देते हैं, और यहाँ युधिष्ठिर महाराज उन्हीं विदुर का चरण स्पर्श करते हैं। वरिष्ठों का सम्मान नहीं होता, स्त्रियों का सम्मान करना नहीं आता। उदाहरण के रूप में, क्योंकि दुर्योधन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो दुर्योधन की जीवन से एग्जाम्पल लेते हैं। दुर्योधन का द्रौपदी के प्रति व्यवहार, और कंपैरिजन के रूप में अर्जुन का उर्वशी के प्रति व्यवहार। दुर्योधन द्रौपदी से कितना द्वेष करता था, क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर ने वो नहीं जीत पाया, तब से द्रौपदी के प्रति उसके मन में द्वेष था। और उस द्वेष की सीमा का ज्ञान तो तब होता है जब गैम्बलिंग मैच हुआ, किस प्रकार वो दुशासन को कहता है कि द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीटते हुए इस भरी सभा में लेकर आओ। कोई बाल पकड़ के घसीटता तो ऐसा नहीं कि चल के आते हो, घसीटते हुए मतलब जमीन पे द्रौपदी घसीटती हुई भरी सभा में एक अंग वस्त्र पहनकर इस प्रकार सभा में लाई जाती है। उस सभा में, उस काल में जब स्त्रियां कभी नहीं आती थीं, बाल खुले हुए हैं, शरीर पे सिर्फ एक वस्त्र पहना हुआ है, जमीन पे घसीटते उसको लाया गया है, तो आप समझ सकते हैं दुर्योधन का स्त्रियों के प्रति किस प्रकार का रेस्पेक्ट होगा। यहाँ अर्जुन इंद्रलोक में है, उर्वशी एक रात अर्जुन के पास आती हैं, अर्जुन से कहती हैं कि मैं तुम्हारे संग संभोग करना चाहती हूँ। अर्जुन हाथ जोड़ के कहता है, हे माताश्री, चरणों की तरफ देखते हुए कहता है, हे माताश्री, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, मैं तो ये आपके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। उर्वशी को क्रोध आ जाता है, कहती है, अरे तो तुम नृत्य के समय मेरी तरफ क्यों देख रहे थे। तो अर्जुन कहता है, हे माताश्री, आप तो मेरे लिए कुंती माँ के समान हैं, क्योंकि आप ही के वंश में तो हम आए हैं, क्योंकि इस उर्वशी का पिछले युग में पुरुरुवा से शादी हुई थी, उस प्रकार उस पुरुरुवा से ही पुरुवंश, आगे जाके कुरुवंश और पांडुवंश आया। आप तो मेरी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ। उस कारणवश उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया। यहाँ अर्जुन इस प्रकार स्त्रियों का सम्मान करता है। अगर याद होगा जब 13वें साल में, जब अज्ञातवास में विराट के देश में थे, जब राजा को पता चले 5 पांडव हैं, तो ब्रहनला जो अर्जुन थे और उनकी राजा की पुत्री उत्तरा, ब्रहनला उनके टीचर थे, तो जब राजा को पता चला तो 16 साल की पुत्री को अर्जुन के सामने लाके खड़ा करते हैं, बोलते हैं, हे अर्जुन, आपसे बढ़िया पति उस उत्तरा को कौन मिल सकता है। तो उस समय अर्जुन क्या कहते हैं, नहीं, मैं इसका टीचर रहा हूँ, एक टीचर अपने स्टूडेंट के संग इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता, ये एक गलत प्रथा शुरू हो जाएगी, मैं आपकी रिक्वेस्ट को मना नहीं करूँगा, मेरा पुत्र अभिमन्यु भी 16 उम्र का है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पुत्री का हाथ मेरे पुत्र के हाथ दे दें। राजा तो खुश था, बोले, आपका पुत्र है, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। इस प्रकार उदाहरण के रूप से हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर आगे 8वें श्लोक में वर्णन आता है डेमोनिक फिलॉसफी, इन लोगों की फिलॉसफी कैसी होती है। तो 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये लोग कहते हैं ये जो दुनिया है ये काल्पनिक है, इसकी कोई रचना नहीं की गई है, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसे ही लोग थ्योरीज देते हैं, डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, चांस थ्योरी जैसी काल्पनिक थ्योरी देकर बताते हैं समाज को कि भगवान का तो कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई अस्तित्व है, किसी चीज़ का कोई फाउंडेशन है, वो है सेक्स लाइफ। मैं नहीं कह रहा, भगवान खुद ही श्लोक में कहते हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कहते हैं जो पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है केवल सेक्स डिज़ायर के कारण हुआ है, एंड दे कंसिडर नो अदर कॉज। इस प्रकार फिर 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऐसी फिलॉसफी का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। जो ऐसे लोग होते हैं जो आसुरिक प्रवृत्ति का पालन करते हैं, वो इतने स्वार्थी हो जाते हैं, इतने मूर्ख हो जाते हैं कि वो अपना ही विनाश नहीं करते, साथ ही साथ समाज का भी विनाश करते हैं। जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दे आर द ग्रेटेस्ट सेल्फ अब्यूसर्स, और केवल वो अपना ही सर्वनाश नहीं, समाज का भी करते हैं। जैसे रावण, कुंभकर्ण ने भी रावण को बोला था, हे रावण, तू क्या कर रहा है, ये गलत है, सीता को वापस लौटा दे, पर मैं तेरा छोटा भाई हूँ, अगर तू फिर भी मुझे कहेगा राम से युद्ध लड़, मैं लड़ने जाऊँगा, पर मैं तेरी इस इच्छा में भागी नहीं बन सकता। मंदोदरी रावण की पत्नी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, यहाँ तक कि मरीच ने भी समझाया, रावण सुनने को तैयार नहीं था। अपनी एक काम वासना के लिए उसने क्या किया, अपना पूरा परिवार, अपना पूरा वंश, अपना पूरा राज्य, सबको सर्वनाश कर दिया, अंत में खुद को भी मरना पड़ा। ये होती है आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों की गति। 10वें श्लोक में भगवान फिर उनकी मेंटालिटी, सोच के बारे में वर्णन करते हैं। उनकी सोच और कामना क्या होती है, सिर्फ एक, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना। वो हद से ज़्यादा द्वेषी और अहंकारी होते हैं। इस प्रकार अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उनको कितना बड़ा सा बड़ा पाप कर्म क्यों ना करना पड़े, वो कभी उस पाप कर्म करने से शर्माते नहीं हैं। फिर 11वें से 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, जो ये आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ एक उद्देश्य, इंद्र भोग या इंद्रियों को संतुष्ट करना। इस कारणवश भगवान बताते हैं ऐसे लोग जो होते हैं आजीवन चिंता की चिता में जलते रहते हैं। उदाहरण के रूप में 13 साल का वनवास पांडवों को मिला था, एक रात धृतराष्ट्र शांति की नींद नहीं सुना था। महाभारत में विस्तार से वर्णन आता है, हर रात जब भी धृतराष्ट्र सोने जाता था तो उस सभा का दृश्य उसकी आंखों में आता था जहां भीम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुम्हारे 100 के 100 पुत्रों को मारूंगा। हर रात धृतराष्ट्र जब सोता था तो रिवर्स में गिनती करता था, एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया। और धृतराष्ट्र को पता था भीम ने जो प्रतिज्ञा ली है, क्षत्रिय ने प्रतिज्ञा ली है, पूर्ण तो करके रहेगा। इस कारणवश धृतराष्ट्र कभी भी शांति से नहीं सो पाया। ऐसे ही कंस का उदाहरण आता है, कृष्ण को मारने चला था पर इतना भयभीत रहता था, इतना आतंक फैला रखा था उस कंस ने, एक रात क्या एक पल वो शांति से नहीं जी पाता था। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे वर्णन करते हैं कि कैसे ऐसे लोग आसुरिक प्रवृत्ति के लोग माया के जाल में और फंसते चले जाते हैं। कभी आपने स्पाइडर या मकड़ी का जाला देखा है? अपने शरीर से मकड़ी अपना जाला बनाती है और जैसे कोई मच्छर और कीड़ा उसमें फंसता है और जितना वो हाथ पैर चलाता है उतना ही फंसता चला जाता है। इसी प्रकार ये माया का जाल है, जितना ही हम इसमें फंसना चाहते हैं या हाथ पैर चलाते हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जीव उतना ही फंसता चला जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण 16वें श्लोक में ऐसे लोगों की गति बताते हैं। क्या गति होती है? भगवान कहते हैं इस दुनिया में दुखी रहते हैं और अगले जन्म में उनका पतन हो जाता है और नरक जाना पड़ता है ऐसे लोगों को। और फिर आगे यहाँ पर भगवान इसी प्रकार इन लोगों की गति 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो ऐसे लोग होते हैं आसुरिक प्रवृत्ति के लोग, वो द्वेष से भरे होते हैं और प्रमुखता विष्णु भगवान से द्वेष करते हैं। द्वेष का फल खुद का सर्वनाश करते हैं और द्वेषी होने के कारण वो किसी के हित के बारे में कभी नहीं सोच सकते। यहाँ तक कि 19वें श्लोक में भगवान खुद ही कहते हैं ऐसे द्वेषी लोग सबसे अधिक द्वेष मुझसे करते हैं। आपने कभी शास्त्र में कोई उदाहरण सुना है जहाँ कोई ब्रह्मा का शिव का द्वेषी हो? हाँ या ना? आपने शायद ही कोई ऐसा उदाहरण सुना होगा, बल्कि आपने उदाहरण ऐसे सुने होंगे कि जो विष्णु का भक्त है वो ब्रह्मा हो या शिव हो या गणेश सबको प्रिय होता है। महाभारत का उदाहरण है, अर्जुन जब इंद्रलोक गए थे तो रास्ते में शिवजी से उनका मिलना हुआ था, शिवजी के संग उनका युद्ध हुआ और शिवजी अर्जुन के बल को देख के इतना प्रसन्न होते हैं, अपना पशुपति अस्त्र दे देते हैं। सभी देवी देवता आते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं अर्जुन को, सब अपने दिव्य अस्त्र दे देते हैं। अर्जुन किसके भक्त थे? ना ही तो शिव ना ही ब्रह्मा, आदर सम्मान सबके करते थे, पर किसके सखे और किसके मित्र थे? कृष्ण के। और वही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं बार बार, जो भक्त होता है वो सबको प्रिय होता है। नारद मुनि, यहाँ तक कि नारद मुनि तो रावण को भी प्रिय थे, कंस को भी प्रिय थे। जब नारद मुनि उनके महल में जाया करते थे तो सब खड़े हो जाते थे कि नारद मुनि आए हैं। इस प्रकार भक्त सबको प्रिय होता है। तो 19वें श्लोक में इस प्रकार भगवान बताते हैं और 20वें श्लोक में इस सब्जेक्ट मैटर को समाप्त करते हुए भगवान कहते हैं जो आसुरिक प्रवृत्ति का लोग होते हैं वो इस काल में सड़ते हैं, परेशान रहते हैं, उनका आज का जीवन बर्बाद होता है, अगला जीवन भी बर्बाद होता है, क्योंकि जो जो पाप कर्म करे हैं उसको अपने कर्म फल के रूप में उनको आगे के जीवन में दंड मिलना पड़ता है। और इस प्रकार वो भौतिक दुनिया में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस कर बार बार दुखी होते रहते हैं। तो अब भगवान ने विस्तार से अर्जुन को बताया, अर्जुन तुम आसुरिक प्रवृत्ति के नहीं हो। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, तो प्रभु ये आसुरिक प्रवृत्ति शुरू कैसे होती है? कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज़ से शुरू होगी। तो उसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण 21वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन अगर व्यक्ति इन तीन चीज़ों का ध्यान रखे तो अपने आप को आसुरिक गुणों से बचा सकता है, आसुरिक गुण और आसुरिक गुण के कारण जो उसकी गति है उससे बचा सकता है। वो क्या है? भगवान कहते हैं 21वें श्लोक में, त्रिविधम नरकासेदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयम् तयत्। अर्जुन, तीन द्वार होते हैं नर के, काम क्रोध और लोभ। काम मतलब भौतिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं का गुण क्या है, भौतिक इच्छाओं के बारे में अगर बात करें, अगर भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाती है तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। अहंकार आने के बाद क्या इच्छा पूर्ण हो जाती है? नहीं, फिर एक और इच्छा आती है, हाँ या ना? जब भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं होती तो व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। क्या भौतिक इच्छा खत्म होती है? नहीं, भौतिक इच्छा फिर भी बनी रहती है। तो ये भौतिक इच्छा जो है, अगर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होती है तो केवल अहंकार नहीं आता, उसके अंदर फिर ग्रीड और बढ़ जाती है। जैसे एक एडवर्टीजमेंट हुआ करता था कि दिल मांगे मोर, जितना पाते हो उतनी इच्छा। तो जब इच्छा पूर्ण होती है तो ग्रीड आता है, लोभ आता है, जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। तो काम का अनुज क्या है? क्रोध। काम का बड़ा भाई क्या है? लोभ, जो भी जिस भी प्रकार से आप कहना चाहें, तीनों साथ में चलते हैं। शुरुआत होती है काम वासना से या काम से, उसका उल्लेख तीसरे अध्याय में हम पहले ही कर चुके हैं। इस काम वासना से अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं? एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण इस 16वें अध्याय के समापन होने पर फिर कहते हैं, अर्जुन अगर आपको इन तीन दुश्मनों से बचना है, कल्टिवेट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मतलब शास्त्र का अध्ययन करिए। और श्लोक संख्या 23 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शास्त्र विद्धिम उसरच्या वर्तते काम कारतः ना ससिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्रों का उल्लंघन करके जीवन व्यतीत करते हैं उनको असुर प्रवृत्ति का कहा जाता है। उनको ना भविष्य में कोई सफलता प्राप्त होती है, ना ही सुख, ना ही शांति। इस प्रकार जो व्यक्ति जो शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करके जीवन व्यतीत करते हैं वो सदैव दुखी रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि हमें सत्व गुण में जीवन व्यतीत करना चाहिए, भगवान की शरण लेकर धर्म का पालन करना चाहिए। तो हम पांडवों जैसी दुखदायक 13 साल के वनवास स्थिति में भी क्यों ना हो। एक बार की कहानी है, द्रौपदी और भीम को बहुत गुस्सा आ जाता है। किस पे? युधिष्ठिर महाराज पे। ऐसा लगता है 13 साल की छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। इतने आनंदित होते हैं युधिष्ठिर महाराज, इतने खुश होते हैं जंगल में, तो द्रौपदी जाके बोलती है, कैसे हो आप? राजा थे, भिखारी बना दिया, अभी भी खुश हो? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अरे और क्या चाहिए जीवन में? साधुओं का संग है, परिवार जन साथ में है, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इससे बड़ा सुखमय जीवन कैसा हो सकता है? द्रौपदी का तो क्रोध बहुत बढ़ जाता है, पारा बढ़ जाता है। भीम भी आते हैं। उस समय जब परिवार में कलेश इतना बढ़ जाता है, जब लगता है कि अब तो डाइवोर्स की स्थिति आ ही गई है, तब व्यासदेव जी आते हैं बद्रीनाथ से। तब आके युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन को इंद्रलोक भेजिए। ये उस समय की कहानी है। सारांश में भगवान यही बताते हैं, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर भक्ति के नियमों का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप जीवन में सही रूप से और 100% आप जीवन में सफल होंगे। इस प्रकार ये 16th chapter का समापन यही करते हैं। और कल हम जब मिलेंगे तो हम कल 17वां अध्याय का वर्णन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।